प्रारंभिक श्लोक का अपन पाठ करेंगे, उसके बाद आज जो मूल विषय है स्वरूपकरण का उसके ऊपर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। रूप में 162 है। पहले श्लोक से अभी अपन जहाँ तक अपना विषय हुआ वहाँ तक अपन एक बार पाठ करेंगे, उसके बाद आगे
हरि मित्र महल मसाज कंचन
अपना खेड़ाला में पिछले लास्ट क्लास में 7 नंबर के श्लोक से स्टार्ट हुआ है, तो अपन 7 और 8 आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले खेड़ाला किसने लिखी है? किसने लिखी? अपन जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके ऊपर कर रहे हैं, उसका अपने को लेखक तो हमेशा अपन कोई पुस्तक नॉवल कुछ भी पढ़ते हैं, उसका राइटर सबसे पहले पता है, सबसे फर्स्ट पेज पर उसके राइटर होते हैं। तो इसमें अंदर में आप देखेंगे तो इसको किसने लिखा है? पंडित दौलत राम जी ने। खेड़ाला किसके द्वारा लिखी है? पंडित दौलत राम जी के द्वारा। और इसमें कितनी ढाले है? 6 ढाले है, बराबर ना। ढाल मतलब क्या होता है? बैटल फील्ड में ढाल मीन क्या होता है? होता ना, जैसे आपने मूवी देखते बाहुबली देखी होगी, तो बाहुबली के अंदर एक हाथ में क्या है उसकी शॉर्ट तलवार है, दूसरे हाथ में क्या है? ढाल है, फील्ड है। वो क्या करती है? रक्षा करती है। क्या करती है? बचाती है। किसी भी शत्रु ने प्रहार किया तो वो शील्ड क्या करती है? हमको प्रोटेक्ट करती है, हमको बचाने का काम करती है। तो उसी प्रकार ये क्या है? ढाल है। ये जो 6 प्रकार की ढाले हैं वो कैसी है कि संसार में हम बार बार ये मोह रूपी शत्रु हमारे ऊपर क्या करता है? प्रहार करता है। बार बार हमारे ऊपर क्या कर रहा है? प्रहार कर रहा है। जो हमने स्टार्टिंग की पहली दूसरी ढाल में देखा ना, 4 गति का वर्णन देखा, फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का स्वरूप देखा। तो ये जो मिथ्या को हमारे ऊपर जो प्रहार करता है, उस प्रहार से रक्षा करने के लिए ये ढाले हैं। जो उन ढालों को फिर 6 प्रकार में बांटा है। पहली ढाल में 4 गति का वर्णन है, दूसरी ढाल में वो 4 गति हमको क्यों मिल रही है उनका कारण बताया है। हम अभी तक हम कौन से गुणस्थान में है? अच्छा, गुणस्थान कितने होते हैं? 14। पक्का 16-17 तो नहीं होते? गुणस्थान कितने होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। तो हम कौन से गुणस्थान में है? 4 में, 5 में, कौन से में है? कौन से गुणस्थान में हम? हम अभी मंदिर में कौन से फ्लोर पे बैठे हैं? 2nd फ्लोर पे, थर्ड पे। सबका अलग ना, अगर बेसमेंट काउंट करेंगे तो थर्ड हो जाएगा ऐसा। तो अभी हम कौन से गुणस्थान में आ रहे? थर्ड में आ रहे? तीसरे में आ रहे ना? तीसरे में बैठे हैं। तो अभी हम कौन से गुणस्थान में है? पहले गुणस्थान में। पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्या। बेसिक अभी हमें पूरा गुणस्थान नहीं करना है, बेसिक, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए जो प्रोसेस है ना, हमें मालूम होनी चाहिए कि खेड़ाला के अंदर पहले गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक कि पहली जो हमने ढाले देखी, पहली फर्स्ट सेकंड ढाल, थर्ड फोर्थ ढाल, या माने तो 5वीं ढाल तक में भी, अभी हम 6 पात्र की बातें, 6 ढाल में प्रारंभ हुई, जो 6 पात्र गुणस्थान वैसे जो मुनिराज है तो उनकी बात 5वीं 6 ढाल के अंदर चल रही है। लेकिन हम अभी कौन सी गुणस्थान में है? पहले में। तो हम तो पहले में है, फिर हमें 5वीं 6 की बातें सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? हम तो पहले में है तो हमें 5वीं 6 को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि हमें उस पोजीशन पे पहुंचना है। अभी हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, वो हमारी कमजोरी है, लेकिन हमारी भावना अनुसार हमें उस गुणस्थान में प्राप्त पहुँचना है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाते क्या है, कहाँ जाना है, वो से जाना है। बचपन से हमने पाठशाला में पढ़ा, सब जगह पढ़ा, क्या क्या प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। अब मोक्ष कैसे होगा वो पता नहीं है बस, लेकिन हमें क्या करना है, मोक्ष करना है। हम मंदिर क्यों आते हैं, मोक्ष जाने के लिए आते हैं। हम पढ़ते क्यों है, मोक्ष जाने के लिए पढ़ते हैं। अब मोक्ष होगा कैसे, उसका रास्ता क्या है, तो वो रास्ता इसमें बताया है। तो अभी हम उस रास्ते की कौन सी स्टेप से है, टेन स्टेप मिथ्या दशा के अंदर है। अब अगर मिथ्यात्व में से हम निकले तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बेसिक रूप में समझना। हम मौजूद में पहले उड़ीसा में है, जिसका नाम है विश्वास उड़ीसा, बराबर। अब देखिए मिथ्यात्व से हम आगे बढ़ेंगे तो कब बढ़ेंगे, अभी हम मिथ्यात्व में है, मोहिनी कर्म के कारण, वो मोहिनी कर्म के उदय के कारण जो हमको मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व के कारण हम इस मिथ्यात्व की दशा में अभी है। अब जब ये मिथ्यात्व हमारा टूटेगा या खुटेगा तब हम तीन तीन जगह जा सकते हैं। जैसे मिथ्यात्व ये विशेष खाली हम नॉर्मल रूप से समझते हैं, मिथ्यात्व से हम जाएंगे तो तीसरे चौथे पांचवे सातवें तीसरे वाले स्थान में जा सकते हैं, चौथे वाले स्थान में जा सकते हैं, पांचवे में जा सकते हैं और सातवें में भी जा सकते हैं। अब छठा पहले आएगा कि सातवा पहले आएगा, छठा वाले स्थान है और सातवा वाले स्थान है मेरी अवस्था, तो छठा पहले आएगा कि सातवा पहले आएगा। हम बेसिकली क्या समझते हैं, छठा पहले आएगा। हमने क्या सोचा कि हम पांचवें वाले स्थान से हमने भूल कर किसी ने भी मेरी अवस्था धारण की तो उसको कौन सा वाला स्थान हो गया, छठा। ऐसा नहीं है, सबसे पहले अगर यहाँ से भी कोई चीज पद द्रव्य रूपी मणि पद धारण करता है तो वो भी सीधे सातवें में जाएगा, सातवें से उतरते समय छठे में आता है, सीधे छठे में नहीं आएगा। सबसे पहले वो स्थान होगा मणि अवस्था का, तो सातवां वो स्थान होगा, फिर सातवें से छठे में आएगा। लेकिन एक बार ध्यान करने मतलब याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुनि अवस्था है तो छठा सातवां पुरस्कार भी होगा, ऐसा नहीं है कि अगर मुनि अवस्था है तो छठा सातवां पुरस्कार भी होगा। मुनि अवस्था में भी पहला पुरस्कार एक दूसरा पुरस्कार भी हो सकता है, क्योंकि सबने यदि यहाँ से घिरेगा उच्च पुरस्कार से घिरेगा तो तीसरे में भी जा सकता है, पहले में भी जा सकता है। तो बात क्या थी कि यहाँ हम जो पहले गुणस्थान में है, मिथ्यात्व जो पहला गुणस्थान है, जब हम अपने मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक की प्राप्ति करते हैं या हमारी मिथ्यात्व की प्रकृतियाँ टूटती है तो हम धीरे धीरे इस गुणस्थान के क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे हमारी सिद्धि बढ़ती है वैसे वैसे हम गुणस्थान को चढ़ते जाते हैं। सेकंड वाला इसलिए नहीं है क्योंकि सेकंड वाला सिर्फ गिरने का है, आते नहीं है वहाँ, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं जाएगा, वहाँ से सिर्फ गिरने का ही है, जैसे दूसरे में से पहले से ही आएगा, इसके लिए पहले से दूसरे में नहीं जाएगा, ऐसा है वो। एक मतलब गुणस्थान का समझेंगे एक अलग ही पूरा, तीन दिन का अपन कैंप लगा सकते हैं गुणस्थान के ऊपर, इतना अच्छा वो है उसका। अभी अपनी बात है कि हम मिथ्यात्व गुणस्थान से चले थे, पहली दूसरी धार में हमने मिथ्या कर्मस्थान को समझा कि हमें मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र है जिसके कारण हम संसार में भटक रहे हैं। अब वहाँ से निकलने का उपाय क्या है, तो तीसरी धार में हमें बताया सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याद ज्ञान चरित्ता, कि जिस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना कोई भी जीव तीन काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, वो सम्यक दर्शन का उपाय तीसरी ढाल में बताया। चौथी ढाल में वही सम्यक दर्शन के साथ में जो सम्यक ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया। फिर पांचवी ढाल में उन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को और प्रबलता देने के लिए बारह भावनाओं का वर्णन किया। उसके बाद छठी ढाल पूर्ण रूप से मुनि अवस्था के ऊपर केंद्रित की गई। क्यों? क्योंकि मुनि अवस्था मुनि बना लिए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उस मुनि अवस्था का एक सचिदाल ने वर्णन किया जिसका हम क्लास में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कई क्लासों तक हमने जो पढ़ा वो था मुनिराज के 28 मूल गुणों का वर्णन। बराबर है, मुनिराजों के कितने मूल गुण होते हैं? 28। साधु के पंच परमेश्वर होते ना, पहले अरहंत, दूसरे सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो उसमें जो साधु है, सामान्य से जो साधु है, उनके 28 मूल गुण होते हैं। बराबर है, 28 मूल गुण होते हैं उनके। अब 28 मूल गुणों में कौन कौन से हैं? अट्ठाईस मूल गुण के अंदर सबसे कॉमनली याद करता है 3, 5, 1, 6, 1, 4। 3, 15, 1, 7, 1, 7। हमारे 3, 15, 1, 7, 1, 7। 3, 5 में सबसे पहला 5 ये सब याद नहीं रहती है हमको, क्योंकि हमारा लेवल बढ़ने है ना, तो लेवल बढ़ने के साथ साथ चीजें भी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि लेवल बढ़ने और अभी भी हम नवोकार मंत्र पे ही लगे हुए हैं, नवोकार मंत्र के अर्थ ही लगे हैं, बल्कि चीजें याद रहती है कि मुनि अवस्था है। क्योंकि हमें मुनि अवस्था धारण करनी है तो हमें मालूम तो होना चाहिए कि वहाँ क्या होता है। 5 महाव्रत का पालन करना पड़ेगा, 5 समिति का पालन करना पड़ेगा, इंद्रियों को विजय करना पड़ेगा, फिर आवश्यक और 5 अन्य गुण, ये हमें मालूम होना चाहिए। जैसे 7 अन्य इसमें से पूरे नाम 7 अन्य गुण में कैसे आता है? जैसे खड़े खड़े आहार लेना, दिन में एक बार आहार लेना, एक शहर ही सोना, कवर से सोना, मंजन नहीं करना, केश हाथ केश में करना, ये सब अभी आपने एक इससे पहले वाले श्लोक में पढ़ा था ना, इससे पहले वाला श्लोक है 6 नंबर का। उसमें लिखा एक जो बार दिन में ले रहा है खड़े अलग निज पान में, सतलोच करत न डरत परिचय सो लगे निज ध्यान। मतलब एक ही बार दिन में आहार लेते हैं, खड़े खड़े आहार लेते हैं, केश लोच करते हैं। अरे उससे पहले वाला श्लोक 5 नंबर का, उसके नीचे के 2 लगे, नीचे ना नौ, मतलब जो स्नान नहीं करते, ना दंत धोवन मंजन नहीं करते, लेख अंबर आवरण मतलब परिग्रह बिल्कुल भी नहीं है, भूमान पिछले रहे में कभी चयन एकाचन करण, मतलब भूमि के ऊपर रात्रि के एक पहर में थोड़ा सा चयन करते हैं, ऐसे ये अन्य गुण है आदि। तो ये 28 मूल गुण मुनिराज निरंतर पालन करते हैं। अब उसमें चाहे वो मुनिराज इस गुण स्थान में हो, चाहे वो मुनिराज प्रथम गुण स्थान में हो, ऐसा नहीं होगा कि मुनि राज अगर पहले गुण स्थान में आ गए तो उनके 28 मूल गुण का पालन बंद हो जाए। मुनिराज अगर पहले गुण स्थान में आ गए वहां भी उनके 28 मूल गुणों का पालन, क्योंकि द्रव्य बना भी यदि होता है मुनिवस्था में द्रव्य भाव भी कहते हैं, तो द्रव्य पना भी जब ही होता है जब मुनिराज 28 मूल गुणों का निरंतर पालन करते हैं। 28 मूल गुणों के पालन के बिना तो द्रव्य पना भी नहीं होता है। तो ऐसे ही मुनिराज के क्या है? 28 मूल गुण है। साधु कौन से परमेश्वर है? 5 परमेश्वर है, उनके ये कितने मूल गुण है? 28 मूल गुण है। अरंत कितने हैं? 46 मूल गुण। करण के कितने मूल गुण है? 46। सिद्ध के 8, आचार्य के 36, साधु को उपाध्याय के और मुनिराज के। अब ऐसा नहीं है कि जो आचार्य उपाध्याय होते हैं उनके 28 नहीं होते, आचार्य उपाध्याय के भी 28 मूल गुण तो होते ही है, उसके उसके अलावा विशेष रूप से उनको दूसरे मजदूर की होते लेकिन सामान्य से साधु अवस्था में चाहे आचार्य हो उपाध्याय हो चाहे साधु हो तीनों अवस्था में 28 मजदूर तो उनको होते ही होते हैं। लेकिन ये जो बेसिक चीज है पांच महावृत का पालन प्रवृत्ति का पालन इंद्रियों में विजय आचरण अन्य गुण ये तो कोई भी विशेष निराज के नियम से होते ही होते हैं। बराबर है जहाँ तक की चर्चा हमने आचार्य गुण में होते हैं तो जहाँ तक की चर्चा को कहते हैं संयमाकरण चारित्र चारित्र के भेद में जहाँ तक की चर्चा आती है संयमाकरण चारित्र और इसके बाद की चर्चा आएगी स्वरूपाकरण चारित्र दोनों में भेद क्या है। संयम प्लस आचरण स्वरूप प्लस आचरण संयमाकरण मतलब कि जो चीज से हमको हमारे अंदर संयम की वृद्धि होती है जैसे वो सात क्रियाओं पालने के महाव्रत के पालन के द्वारा इंद्रियों के विषयों के द्वारा मुनिराज अपने संयम की वृद्धि करते हैं संयम की वृद्धि करते हैं और ये गुण बाहर की क्रियाओं और शरीर आदि से जुड़े हुए रहते हैं यहाँ तक की क्रियाएं तो ये संयमाकरण चाहिए। अब आदि की जो चर्चा आएगी वो मात्र स्वरूप के ऊपर निर्भर करेगी वहाँ बाहर की चीजों से शरीर आदि से कुदरत आदि से किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा वहाँ एकमात्र अपने स्वरूप से ही सारे की सिद्धि उसके अंदर बताएंगे तो उसको कहते हैं स्वरूप का चरण मतलब अपने स्वरूप के अंदर ही चरण करना स्वरूप के अंदर ही निवास करना उसमें ही लीन रहना उसका नाम है स्वरूप का चरण चारित्र।
सेवन नंबर का छंद है एक बार बोलते हैं फिर उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसकी हेडिंग है मुनियों ना तप धर्म विहार तथा स्वरूपाचरण चारित्र। तप तपे दा मुनि साथ में नहीं भव सुख सदा जो है सफल संगे स्वरूपाचरण जिस हो प्रगत आप यहाँ तक जो 28 मूल गुण की चर्चा की उसके आगे क्या लिखा तप तपे द्वादश कि 12 प्रकार के तप को धारण करते हैं 10 प्रकार के धर्म धारण करते हैं और रत्न त्रय सेवे सदा जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है उसकी सदा सेवना करते था उसका सदा पालन करते हैं। मुनि साथ मेवा एक विचरे सहे नहीं भव सुख सदा कि भव सुख जो संसार का सुख है ऐसा कोई अगर बोले कि मुनिराज 28 मूलगुणों का पालन ख्याति लाभ पूजा की इच्छा से करते हैं कि मैं इतना पालन करूंगा तो लोग मेरी क्या करेंगे पूजा करेंगे मेरी क्या होगी प्रसिद्धि होगी कि मैं इतना उपवास करूंगा तो मेरी प्रसिद्धि होगी मैं इतना तप करूंगा जैसे बाहुबली मुनिराज एक वर्ष तक खड़े रहे तो वो ऐसा सोच रहे थे कि मेरी क्या होगी प्रसिद्धि होगी लोग क्या करेंगे कि एक साल तक बिल्कुल कंटिन्यूसली खड़े रहे थे प्रसिद्धि होगी तो क्या लिखा कहे नहीं भव सुख सदा कि एक क्षण मात्र के लिए भी वो इन 28 मूल गुणों के पालन के द्वारा संसार के सुख की इच्छा नहीं करते हैं क्योंकि जब द्रव्यलिंगी की भी चर्चा आती है तो द्रव्यलिंगी पना भी ऐसा अगर हमने इतनी बार पासी डाल के अंतिम उसमें देखा ना अंतिम ग्रहविक लौ की हद पायो अनंत दिव्या पद पर सम्यक ज्ञान न साधो दुर्लभ निज में मुनिराम कि हम खुद किसी और की चर्चा नहीं हम स्वयं इतनी बार मुनि अवस्था हमने धारण की कि हमारे मुनि अवस्था के पृथ्वी कमंडलों का ढेर किया जाए तो कौन सा पर्वत बन जाए सुमेरु पर्वत। जो सुमेरु पर्वत है अगर हमने इतनी बार मुनि अवस्था धारण की है कि हमारे पृथ्वी कमंडलों का ढेर किया जाए तो एक नया सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए, इतनी बार हमने मुनिवस्था धारण की है, लेकिन कहाँ तक की धारण की है, यहाँ तक की है। ये जो संयमाचरण चारित्र है, हम यहाँ तक जाके आए, हमने भी 28 मूल गुणों का पालन किया। ऐसा नहीं कि हमने 28 मूल गुणों का पालन नहीं किया, हमने भी 28 मूल गुणों का पालन किया, निर्विचार पालन किया, इतना उग्र तप किया कि कोई क्या करे, कोई हमारे साथ के उसमें नमक भी भर दे, हमारी त्वचा को काट के उसमें नमक भी डाल दे, तो आँख का कोर लाल नहीं हो, मतलब जरा भी आँख से अश्रु में निकले आँख लाल तक नहीं हो, इतना उग्र हमने तप किया। और बिना किसी छाती लाल पूजा की इच्छा से हमने ऐसा तप किया, लेकिन स्वरूप चरण के बिना अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण पुनः पुनः हम इसी चारों गतियों में भटकते रहे। वापिस वहाँ से देव गति की प्राप्ति की, मनुष्य आदि गति की प्राप्ति की, लेकिन स्वरूप के अंदर चरण नहीं होने के कारण वो चक्र हमारा रुका नहीं। अब यहाँ से जो चर्चा प्रारंभ होगी वो विशेष रूप से हमारे आचरण, हमने जो आज तक भूल की है, सबसे बड़ी जो हमने भूल की है कि हम भारत में तो सब कुछ समझते रहे लेकिन अपने स्वरूप को नहीं समझा, उसकी चर्चा हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तीसरी लाइन में क्या लिखा, यो है सकल संयम चरित्र। अब तक क्या है, ये सब तो क्या हो गया, सकल संयमाचरण हो गया, सुनिए स्वरूपाचरण। अब कि अब पंडित दौलत राम जी किसकी चर्चा करेंगे, स्वरूपाचरण की। अब तक जो चर्चा की वो थी संयमाचरण की, अब वो चर्चा करेंगे स्वरूपाचरण की। और उसके नीचे उन्होंने रीजन दिया, जिस होत प्रगटे आपनी विधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब, कि जिसको धारण करके अपनी निधि, अपनी निधि क्या है, अपनी निधि क्या है, अपना खजाना क्या है, कि मेरे अंदर जो अनंत गुण भरे हुए हैं, है कि नहीं, पहले तो ये नक्की करना है ना, है कि नहीं है। लेकिन क्या है कि उन हमको उनका पता नहीं है, जैसे किसी का है, बराबर है। अब उस घर के अंदर यहाँ पे क्या नीचे खजाना लगा हुआ है, बराबर है। अब उस घर के अंदर एक चूड़ी निकल गई, दो चूड़ी निकल गई, तीन चूड़ी निकल गई, और बिल्कुल गरीबी से निकल गई, जिनको खाने के भी मतलब बांधे है, ऐसा ऐसे निकल गए। अब चौथी चूड़ी वाला आया और उसने इसको बोला तो उसको क्या मिलेगा, खजाना मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, ये लोग भी अमीर थे कि नहीं थे, खजाना उनके पास भी था कि नहीं था, खजाना तो था लेकिन उनको खजाने का पता नहीं था, तो उस खजाने का पता नहीं होने के कारण वो कहते थे गरीब थे। और इसने थोड़ा सा पुरस्कार किया और इस खजाने को इसने खोला, तो इसको क्या हो गया, अमीर हो गया। तो वैसे ही हम तो है, हमारी दशा है, हम लोगों के अंदर अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर ऐसे अनंत गुणों का क्या है, खजाना है। लेकिन हमको उन अनंत गुणों के केवी को जो गुण की प्राप्ति होती है, केवीय केवल ज्ञान में जो अनंत गुण प्रकट होते हैं, वो अनंत गुण हमारे अंदर है, लेकिन हमको उनका ज्ञान नहीं होने के कारण हम कैसे बने पड़े हैं, विकारी बने पड़े हैं, गरीब बने पड़े हैं। और जिस दिन हमको सम्यक की प्राप्ति होगी या उन अनंत गुणों का भान हमको होगा, तो हम कैसे हो जाएंगे, धनी बन जाएंगे, हम भी सम्यक रत्न प्रेमी बन जाएंगे। तो ऐसे अनंत गुण जिस होत करते अपनी निधि, कि जिसके होने से, किसके होने से, इस स्वरूपाचरण चारित्र के होने से, इस स्वरूपाचरण चारित्र के द्वारा ये जीव किसको प्राप्त करता है, अपनी निधि, निधि मतलब खजाना, ये स्वरूपाचरण चारित्र के द्वारा जीव अपने खजाना। और खजाना मतलब यहाँ पे रुपये पैसे से नहीं है, खजाना मतलब क्या है, खजाना मतलब क्या है, अपनी निधि। और अपनी निधि क्या है, अपना घर अपनी निधि है ना, अपना घर तो अपनी निधि है, शुद्धात्म अपना घर क्या बोलते हैं, अपना आत्मा अपना घर है। देखो दो चीजें हुई इसके अंदर, क्या हुआ, एक मैंने झंडे भी बोला अपना घर अपनी निधि है, तो हमारा ध्यान किस घर की ओर जाता है, जो अभी दस नंबर रोड पे है, सात नंबर रोड पे है, छह नंबर रोड पे है, अंधेरी में है, उस घर पे जाता है ना। लेकिन यहाँ बात किस घर की चल रही है, जिस घर की बात चल रही है कि अपनी निधि तो अपने में है, ढाई रक्त में रक्त प्रयास, रक्ता सुखो रक्त रखना है, झूठे है उसके पुरस्कार। यहाँ जिस घर की बात चल रही है वो अपने घर की, तो जब मैं अपने घर को पहचानूंगा, जिस होत प्रगटे आप निधि, कि जिस स्वरूपाचरण चारित्र को धारण करने के बाद मुझे किसकी प्राप्ति होगी, अपनी निधि, मतलब मेरे अंदर जो ज्ञान दर्शन सुख धीरे का खजाना भरा है उसकी प्राप्ति मुझको होगी। और इसके सामने क्या होगा, नीचे परिचित प्रवृत्ति तक दो चीजें होंगी। जब मुझे स्वरूपाचरण चारित्र हुआ तब दो चीजें हुई। सबसे पहले तो जैसे देख हो ना, आप इस साइड देख रहे हैं तो आपका ये साइड का देखना, आपने लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो आपका राइट साइड का देखना बंद हो जाता है। उसी प्रकार जब ये चीज स्वरूपाचरण चारित्र में बढ़ता जाता है तो इसकी बाहर की समस्त प्रवृत्ति छूट जाती है, अर्थात मिट जाती है, मिटाना नहीं पड़ता है। दो बातें, एक मिटाना और कुछ नहीं करना है, स्वयं अपने स्वरूप में लीन होता जाता है और बाहर की समस्त प्रवृत्ति स्वतः ही मिट जाती है, उसको वहाँ मिटाना नहीं पड़ता है। हमें तो मोक्ष क्या है, करना पड़ेगा, हमें तो क्या करना है, मोक्ष करना है। मोक्ष क्या करना पड़ता, करना पड़ता ना, कहीं से लाना पड़ेगा बाहर की चीज। हमने क्या है, हमने मोक्ष को क्या माना है, कोई बाहर की चीज है। मोक्ष क्या है, कोई बाहर की चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज है। देखो ना, बच्चे को हवा बना देते हैं कि क्या ये हाथ नहीं लगाना, काटा है काटा है, हाथ नहीं लगाना। तो ऐसे हम बचपन से मोक्ष को क्या बना देते हैं, एक हवा बना देते हैं कि मोक्ष क्या है, मोक्ष तो इतनी बड़ी चीज है, मोक्ष तो ऐसा है, मोक्ष होने से ऐसा ऐसा। तो हमको क्या लगने लगता है कि मोक्ष तो कोई बाहर की चीज होगी, मोक्ष मतलब कोई अलग ही चीज होगी। लेकिन वो अलग चीज नहीं है। मोक्ष मतलब क्या, अपने स्वरूप में जमना उसका नाम मोक्ष। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, अपने स्वरूप के अंदर जमना रमना उसी का नाम है मोक्ष। क्यों, सिद्ध भगवान क्या करते हैं, सिद्ध भगवान क्या करते हैं, अपने में जमते रमते हैं, अपने आत्मा में जमते रमते अपने आत्मा का आनंद भोगते हैं। तो वही चीज, वो अलग तो कुछ करते नहीं। तो उसी प्रकार मोक्ष क्या है, जब ये जीव पर पदार्थ की दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि करता है, तो इसको अपने स्वरूप में जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख लीजिए, जो अनंत गुण है उनका भान होता है, और वही भान होना और उसकी शुद्धि की वृद्धि होना उसका नाम ही है मोक्ष। तो ये मोक्ष की प्रक्रिया है कि मोक्ष जब जाता है जी, जैसे जैसे शुद्धि की वृद्धि होती है तो वो धीरे धीरे संयमाचरण चारित्र से स्वरूपाचरण चारित्र की तरफ आता है, और ये स्वरूपाचरण चारित्र से उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है और बाहर की समस्त प्रवृत्ति उसकी मिट जाती है, इसको मिटाना नहीं पड़ता। दर्पण है, दर्पण में क्या लगा हुआ, दर्पण के सामने काम, दर्पण हमारे सामने लगा हुआ है, हमने दर्पण देखा। अब दर्पण में सामने क्या दिख रहा है, एक पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा हमें दर्पण, काला कलर का पर्दा है, वो पर्दा हमें दर्पण में दिख रहा है। तो हम क्या माने कि दर्पण क्या हो गया, काला हो गया। दर्पण क्या हो गया, एक मिरर है, एक मिरर आपके सामने रखा हुआ है, मिरर की अपोजिट साइड में एक कर्टन है, वो कर्टन ब्लैक कलर का है। तो वो दर्पण वो कर्टन को शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर वो मिरर ही नहीं है। मिरर किस काम का, अगर वो दिखाएगा नहीं तो मिरर किस काम का, वो दिखाएगा बराबर है। अब वो दिखा रहा है तो वो मिरर दर्पण काला है कि नहीं है, काला दिख रहा है ना, काला है कि नहीं है। अच्छा, अब वो काला दिख रहा है, चलो काला हटाना है तो क्या करना है, उस पर्दे को हटा देना है, उस पर्दे को, बोलो बोलो, उस पर्दे को क्या करना है, हटा देना है, बराबर है, पर्दे को हटा देना है, यही भूल है। बस यही मूल है। अरे पर्दे को हटाना नहीं है, पर्दे के जब पर्दा लगा हुआ है तब भी दर्पण स्वच्छ है ऐसा जानना है। आप जब दर्पण का तो स्वभाव ही झलकाना है, दर्पण का तो अगर दर्पण उस पर्दे को ना झलकाए तो दर्पण का स्वभाव ही नहीं रहेगा। अगर दर्पण उस पर्दे को नहीं झलकाए तो वो दर्पण का स्वभाव ही खत्म हो जाए, फिर उसे दर्पण कहेगा कौन? अगर दर्पण सामने वाले चीज को प्रतिदिन रिफ्लेक्शन नहीं करेगा तो उसको मिरर कौन कहेगा? वो मिरर तो दिखा रहा है, लेकिन उसको उस पर्दे के सामने होने पर भी, उस काले कलर के होने के बाद भी ऐसा मानना कि दर्पण तो कैसा है, स्वच्छ है, उसी का नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान उसी का नाम है। कि भेद ज्ञान करना है, किससे भेद ज्ञान करना है? मुझको कर्म आदि से, राग द्वेष आदि से भेद ज्ञान करना है। तो अब भेद ज्ञान करना है तो क्या करना होगा? एक एक राग द्वेष को उठा उठा के हटाना पड़ेगा। ये पाप, ये लोभ है, इस लोभ को मैं हटाता हूँ। ये क्रोध है, इस क्रोध को मैं हटाता हूँ। ये मान है, इस मान को मैं हटाता हूँ। ऐसे हटाना पड़ेगा ना, तभी तो दर्प क्लियर होगा। हटाना है कि क्या करना है? उनके होते हुए भी जो मेरा स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव तो उन क्रोध मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से भिन्न है। मेरे स्वभाव में कभी भी ये मोह राग द्वेष के भाव प्रवेश ही नहीं करते। इसको जानना, इसका श्रद्धा करना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। कोई हटाने बैठेगा तो इसको हटेगा नहीं। आप अगर ऐसे हटाने जाओ, ये मेरा गुस्सा मैं से तोड़ता हूँ, ये मेरा मान इसको मैं तोड़ता हूँ, आप ऐसे करोगे तो वो होगा भी नहीं। ऐसा ना, जैसे दस लक्षण के दिन सबसे पहला दिन किसका होता है? उत्तम क्षमा का। तो उस दिन क्या नहीं करना? गुस्सा नहीं करना। क्षमा का दिन है ना, तो उस दिन गुस्सा नहीं करना। दूसरा दिन किसका होता है? मार्ग मतलब मान का। तो उस दिन मान नहीं करना, गुस्सा कर सकते। गुस्से वाला दिन तो चला गया, पहले से पहला दिन गुस्से वाला था ना, तो पहला दिन तो चला गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? गुस्सा कर सकते हैं, मान नहीं करेंगे। तीसरे दिन माया नहीं करेंगे, क्रोध कर सकते हैं। चौथे दिन लोभ नहीं करेंगे। ऐसा एक एक दिन अलग अलग वाली बात नहीं है। आप एक को अलग अलग करने जाओगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि वो पुद्गल का कार्य है, ये जीव का कार्य है। जीव को वर्तमान समय में भी उसी समय ऐसा जानना है, ये जितने भी मोह राग द्वेष आदि के विकारी भाव है वो मेरे नहीं है, वो मैं उनका करता हर्ता नहीं हूँ। लगता है अलग अलग आएंगे, कहीं कहीं करता भी है, कहीं कहीं नहीं भी है, लेकिन मूल रूप में हम नॉर्मल में समझेंगे तो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव मेरे नहीं है, मैं उनसे बिल्कुल कैसा हूँ, भिन्न हूँ। बराबर है। तो जब ये स्वरूपाकरण कार्य होता है तो बाहर की सभी प्रवृत्ति धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाती है। देखिए भावार्थ 176 से नीचे भावार्थ। भावलिंगी मुनि ने शुद्धात्म स्वरूप में लीन रही ने प्रतपू प्रतापवंत वर्तमूते तत्व अने हट बिना बार प्रकार न सपना शुभ विकल्प होए से ते व्यवहार करते। दूसरा भाव रूप उत्तम समाधि परिणाम के धर्म से भावलिंगी मुनि ने ऊपर कहा सेवा तप अने धर्म नु आचरण होए छे। सेव मुनियों ना संग साथे अथवा एकला विहार करे छे। कोई पण समय संसार ना सुख में इच्छता नथी। आ रीते सकल चारित्र नु स्वरूप कहे। मतलब जो सबसे पहले सकल चारित्र की जो बात आई कि 12 प्रकार के तप तपते हैं, 10 प्रकार के धर्म का धारण करते हैं और एक अथवा संग में विहार करते हैं, इस प्रकार मुनिराज होते हैं। दूसरा, अज्ञानी जीव अनशन आदि तप की निद्रा माने थे, पर केवल बाह्य तप तपत करवाती तो निद्रा खाए नहीं। शुद्धोपयोग निद्रा के कारण से जैसी उपचार की सपने पर निद्रा के कारण कहे थे। जो बाह्य दुख सहन करूँ एक निद्रा के कारण हो तो पशु वगैरह पर भूख प्रसादी सहन करे थे। बराबर है, लॉजिक समझ में आया। जो पहले का ना जो तप आदि धारण करते हैं तो बाहर अज्ञानी जीव क्या समझता है कि व्रत उपवास आदि करने से ही निद्रा होती है। इसे व्रत उपवास आदि का निषेध नहीं है, उसके पीछे छिपे हुए भाव को समझना है कि मैं जो उपवास कर रहा हूँ वो उपवास मात्र इस शरीर को प्रश करने के लिए नहीं है, वो उपवास मूल रूप में मेरे आत्मा के निकट रहने के लिए मैं उपवास कर रहा हूँ। मतलब मैं अगर उपवास नहीं करता हूँ तो मेरे बाहर के कार्यों में मेरा ध्यान जाता है, तो उपवास का दिन है तो मुझे बाहर में कुछ करना नहीं है, भोजन आदि का कार्य नहीं है, तो मेरा ध्यान बाहर की प्रवृत्ति से हटकर अपने ध्यान में अपने स्वरूप के ध्यान में लगे, इसके लिए उपवास किया जाता है। और कोई मात्र ऐसा माने कि मैं 10 उपवास करूंगा तो अंतिम दिन क्या होगा, मंदिर में मेरा सम्मान होगा, मैं 10 उपवास करूंगा तो मुझे नाम लिखे मेरा सम्मान करेंगे, मुझे सब लोग पारना करेंगे, सब लोग मुझे पारना कराने के लिए आएंगे, इतना सब पूरे मेरे फैमिली रिलेटिव मुझे जानेंगे, सब जगह मेरा नाम होगा। तो ऐसी भावना से उपवास आदि करता है तो वो उल्टा उसको पाप का भागी ही बनता है। तो जो उपवास आदि अंशन आदि के पीछे जो मूल भावना है उसको समझना चाहिए। क्योंकि इसे लॉजिक क्या दिया, अगर उपवास आदि ही निद्रा में कारण होए तो पशु वगैरह पर भूख प्रसादी सहन करे थे, जानवर आदि तो कितने कितने भूख सहन कर लेते हैं, कई कई जानवर जिनको कितने दिन तक भोजन नहीं मिलता आदि, तो वहाँ तो कितने अगर भूख प्यास को सहन करना ही उपवास होगा तो ऐसे तो भिखारी जिसको भोजन नहीं मिलता या फिर पशु आदि है जिनको भोजन नहीं मिलता तो वो तो कितने बड़े उपवासी हो जाएंगे, उनको तो फिर कितनी निद्रा होनी चाहिए, है ना। अगर हम उपवास आदि से हम निद्रा मानेंगे तो ऐसे जीवों को तो बहुत निद्रा होनी चाहिए। तो यहाँ इसके लिए स्पष्ट किया कि ये निद्रा का मूल कारण नहीं है, निद्रा का मूल कारण तो अंतरंग तप है और इन तप के पीछे जो वास्तविक स्वरूप है वो है। अब नीचे एक प्रश्न दिया है, ये तो पराधीन जो उन्होंने कहा ना कि पशु आदि भी तो भूख प्यास सहन करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन किया है, क्या किया है, ये तो पराधीन पड़े सहे थे पर स्वाधीन पड़े धर्म बुद्धि के उपवास आदि सब करे तेने तो निद्रा खाए थे। प्रश्न बराबर है, क्या कहा कि आपने कहा कि जानवर आदि पशु आदि भी भूख प्यास सहन करते हैं, तो उसने लॉजिक दिया कि वो तो परवश होकर सहन करते हैं, उनको तो मतलब ऐसी मजबूरी है कि जिसके कारण उनको सहन करना पड़ता है, लेकिन हम लोग तो स्वाधीन पड़े यानी धर्म बुद्धि से, किस बुद्धि से, धर्म बुद्धि से हम उपवास आदि करते हैं तो उसको तो निद्रा का कारण कहना चाहिए। तो उसका उत्तर दिया, क्या लिखा, धर्म बुद्धि थी भाई उपवास आदि करे, यहाँ उपयोग तो अशुभ शुभ व शुद्ध रूप जीव जेम परिणमे तेम परिणमो उपवास न प्रमाण मा जो निद्रा खाए तो निद्रा नु मुख्य कारण उपवास आदि चीज खरे पर एम तो बने नहीं। क्योंकि हम इसमें तीन बात बता दी, उपवास आदि के समय जीव के भिन्न भिन्न परिणाम हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकता है शुद्ध भी हो सकता है और मुनिराज आदि के शुद्ध भाव भी हो सकते हैं। अशुभ कैसा कि जैसे हम आजकल होता है कि सब एक दूसरे की देखा देखी उपवास कर लेते हैं कि सब लोग उपवास करते हैं, सब लोगों का पालना होता है, तो हम भी क्या करेंगे इस बार 10 नहीं तो 5 दिन तो 5 नहीं तो 3 दिन तो हम भी क्या करेंगे उपवास करेंगे। अब उपवास करके क्या होता है, घर में राजा जैसे बैठ जाते हैं और घर वाले कुछ काम भी नहीं बोलेंगे, क्यों, इनका क्या है आज उपवास है, किसी ने मम्मी ने कुछ काम बोल दिया या घर में किसी ने कुछ काम बोल दिया तो हम कैसा बोलते हैं, अरे मेरा तो क्या है उपवास है, अपने काम बिल्कुल राजा जैसे बैठ जाते हैं, टीवी के सामने बैठे रहेंगे, मोबाइल में कंटिन्यूसली चला मोबाइल चलता रहेगा, तो वो सब तो उपवास आदि से कौन सा भाव हो गया, उल्टा अशुभ भाव हो गया, अशुभ भाव। दूसरा भाव, उपवास आदि के दिन में हम मंदिर आदि में अधिक पूजा आदि में समय व्यतीत करते हैं तो वो शुभ भाव, और मुनिराज आदि उपवास आदि के समय कि हमें आहार आदि के लिए जाना पड़ता तो समय व्यतीत होता था तो उपवास आदि के समय और वो अपने आत्मा में रमण करते हैं तो शुद्ध भाव ऐसा होता है। जीव जेम करण में प्रेम करणमो उपवास न प्रमाण में जो निद्रा खाए तो निद्रा नो मुख्य कारण उपवास आदि ही खड़े पर एम तो बने नहीं। कारण के परिणाम दुष्ट तथा उपवास आदि करता पर निद्रा खड़ी प्रेम संभवे। क्योंकि अगर उपवास आदि को निद्रा का कारण कहोगे तो अशुभ भाव को भी निद्रा माननी पड़ेगी। अगर उपवास को निद्रा का कारण कहोगे तो अशुभ भाव और शुभ भाव से भी निद्रा माननी पड़ेगी। कि किसी ने उपवास किया उसको चाहे शुभ हो चाहे शुभ हो, लेकिन हमको क्या मानना पड़ेगा कि उसके कर्मों की क्या हुई निद्रा हुई। तो ऐसा तो कभी भी संभव नहीं है। निद्रा खाली केम संभवे नहीं जो एम कहे तो कि अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग करणवे के अनुसार बन निद्रा थे। अब उसने और क्या लॉजिक दिया? तो लॉजिक भी बिल्कुल अच्छा लॉजिक है। पहले क्या कहा कि पशु वगैरह भी उपवास करते हैं, मतलब भूखे रहते हैं। फिर उसके बाद में क्या उनने लॉजिक दिया कि वो तो पर्वत होके करते हैं लेकिन हम तो अपने मन से करते हैं। फिर दूसरा वो बताया कि हम अपने मन से करते हैं तो भी हमारे अशुभ भाव शुभ भाव भी होते हैं तो उनको निद्रा कैसे कहेंगे। फिर उसने लॉजिक क्या कहा कि अशुभ भाव को मत कहो कि जिसके जैसे भाव है उस अनुसार से तुम निद्रा कहो तो फिर क्या बाधा है। जिस अनुसार से परिणाम हो उस अनुसार से अगर निद्रा कहेंगे तो क्या बाधा है। अशुभ भाव से नहीं मानो, चलो शुभ से भी नहीं मानो, लेकिन शुद्ध से तो मानो। तो उसका बाद में क्या वो दिया कि तो अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग करने में तेरे अनुसार बंद निद्रा थे तो उपवास आदि तप निद्रा नो मुख्य कारण क्या रहे। अगर अगर अशुभ भाव शुभ भाव और शुद्ध भाव के डिफ्रेंशिएशन से निद्रा का कारण कहेंगे तो फिर शुभ भाव शुद्ध भाव उसका कारण हुआ, उपवास उसका कारण नहीं रहा। क्या तो अशुभ शुभ परिणाम बंद न कारण खरा तथा शुद्ध परिणाम निद्रा नु कारण खरा। बराबर है कि अगर ऐसा कहोगे तो अशुभ और शुभ भाव तो बंद के कारण होगा और जो शुद्ध भाव है वो भाव मात्र निद्रा का कारण रहेगा। वहाँ उपवास आदि निद्रा का कारण नहीं रहेगा। जीव के जो भाव है वो भाव ही निद्रा का कारण कहा जाएगा। बराबर है। कितने भाव की मुख्यता कही? अशुभ भाव। देखिए तीन ही भाव होते हैं, एक अशुभ भाव, शुभ भाव या शुद्ध भाव। अभी हमारे कौन सा भाव है? शुभ। अभी वर्तमान में हम यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ बैठे बैठे भी किसी किसी का भाव कहाँ होगा, कहाँ होगा? यहाँ बैठे बैठे भी यहाँ बैठे होना जरूरी नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारी देह से तो हम बैठे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ होगा कि कुछ भी चीज में कि आज मुझे ये करना है, आज शाम को मुझे बाहर खाना खाने जाना है, आज शाम को मुझे ये मूवी देखने जाना है, या मुझे ये एग्जाम की तैयारी करनी है, या मुझे ये करना है, उन आदि भावों में रहा तो यहाँ भी हमारा कौन सा भाव हुआ? अशुभ भाव। हम पूर्ण ध्यान से यहाँ बैठकर स्वाध्याय आदि कर रहे हैं तो शुभ भाव, शुद्ध भाव अभी हमारे वर्तमान में नहीं है क्योंकि अभी हमारे उतनी शुद्धि नहीं है। उन तीन दशा चौकड़ी के अभाव पूर्वक की शुद्धि हमारे नहीं है। तो अभी हमारे जो भाव है उस भाव के अनुसार जो बंध कहा वो उपवास आदि बंध का कारण ठहरेगा, निद्रा का कारण नहीं होगा। आगे फिर प्रश्न किया जो एम थे तो अनशन आदि ने तपनी संज्ञा केवी रीते कही। बराबर। अगर ऐसा ही है तो अनशन आदि उपवास आदि को तप ही क्यों कहते हो? ये पूरा लॉजिक समझना। सबसे पहले तप को निद्रा का कारण कहा, तपा सुख में कहा तप का निद्रा कि तप निद्रा का कारण है। फिर उसने बोला कि उपवास आदि को निद्रा का कारण कहते हैं, तो उसकी शंका का समाधान किया कि उपवास आदि निद्रा का कारण नहीं है। उस उपवास के पीछे जो जीव का शुभ और शुद्ध भाव है, वो भाव ही शुद्ध भाव बंद का कारण और शुद्ध भाव निद्रा का कारण है। फिर उसने वापस से प्रश्न किया, अगर ऐसा है तो उपवास आदि को तप के संज्ञा में रखते ही जो हो, तो उसका उत्तर दिया कि तेने बाह्य तप कहा थे। बाह्य नो अर्थ एक है कि बाहर बीजाओं ने दिखाए किया तपस्वी थे, पर पोते तो जेवो अंतरंग परिणाम हसे देवो पर काम से। बराबर है कि उसे भाई भाई तप की संज्ञा में रखा कि भाई जो छह प्रकार के भाई तप हैं उसने उनको रखा है, लेकिन उन तप के द्वारा जैसे दीर्घ प्रदान करता है वैसा ही इसको उसका फल प्राप्त होता है। बराबर समझ में आया इतना लॉजिक, ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे हम अपने सब अलग अलग पढ़ेगा ना, कोई सीए कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, तो जैसे उनकी बुक में अपने कोर्स में जैसे लॉजिक देते ना कि ये लॉजिक है, हम कॉमर्स पढ़ते हैं, सीआर डीआर करते हैं, लेजर करते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं, तो उसके अंदर जैसा लॉजिक होता ना कि ये लॉजिक हुआ, ये ऐसे इस डिप्रिसिएशन होता है, इसका इस रेशो से होता है, तो वैसे ही यहाँ भी पूरा एक एक लॉजिक से समझाई है और बिल्कुल साइंटिफिक रीजन देते हैं, बिल्कुल एक एक चीज समझाते हैं। ऐसा नहीं कि बस लिख दिया, उसका एक एक क्लियर किया है कि इस चीज को ऐसा ही क्यों कहा, इस चीज को इस कारण से क्यों कहा। तो बस थोड़ा हमारे हमको थोड़ी रुचि लाने की जरूरत है कि जैसे हम वहाँ रुचि रखते हैं, क्यों रुचि रखते हैं। मैं पहले बोला वहाँ पे रुचि क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक एम रखी है। क्या एम रखी है कि मैं सीए बनूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। सीए कोई सीए कर रहा है तो सीए क्यों कर रहा है, टाइम पास के लिए तो नहीं कर रहा है ना, सीए क्यों कर रहा है, जॉब के लिए। तो जॉब तो हर कुछ कुछ भी पढ़ लेता तो जॉब मिलती, लेकिन फिर सीए क्यों किया, क्योंकि एक लग्जरी लाइफ के लिए वो सीए करेगी। जॉब कैसी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, मेरा पे स्केल कैसा होगा, एक अच्छा पे स्केल मेरा होगा, इस हिसाब से वो उस पढ़ाई में इतना ध्यान देता है, है ना, दिन रात एक कर देता है। क्या करता है, एग्जाम आते हैं इंटर्नशिप करता है, सुबह से लेकर शाम तक इंटर्नशिप करता है, कोचिंग भी करता है, फिर एग्जाम के टाइम से बिल्कुल खाना पीना छोड़ के पढ़ाई करता है, इतना ज्यादा वो लग जाता है। तो वहाँ क्या है, वहाँ उसको क्या मालूम है कि इसका जो फल मिलेगा उससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, इसका जो फल मिलेगा, एक अच्छी जॉब मिलेगी, मेरा स्टेटस अच्छा होगा, मैं लग्जरियस लाइफ जी सकूंगा, मैं मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला, सब कुछ होगा, तो उसके फल में मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा उसने नक्की किया है। लेकिन यहाँ पे रुचि क्यों नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ का फल जो है, क्या फल मिलेगा, ये इन सबके फल से क्या फल मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मोक्ष की प्राप्ति होगी तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, पक्का मिलेगा। हमें अभी ये नक्की ही नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शंका है ना। जैसे ना कोई रोग हो जाता है और एक हमारा फैमिली डॉक्टर है, जहाँ हम बिल्कुल बेधड़क चले जाते हैं, हमें इसमें बिल्कुल शंका नहीं, अब वो मान लो हॉलीडे से गया, आउट ऑफ इंडिया गया है, पर हमें कुछ बीमारी हो गई, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाने से एक बार क्या होता है, शंका लगती है, अरे ना जाने कैसा होगा, कैसी दवाई देगा, उसकी दवाई से कोई रिफ्लेक्शन बाद में समय रिएक्शन नहीं हो जाए, तो हम वहाँ जाने में 10 बार सोचते हैं, लेकिन अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल नहीं सोचते। तो ऐसे बाहर की चीजें करने में तो हमें वो गोल बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि हमें अच्छी जॉब मिलेगी, क्यों, क्योंकि जितनों ने भी सीए की है उनको अच्छी अच्छी जॉब मिली है, तो मैं भी करूँगा तो मुझे भी जॉब मिलेगी। आज तक जो भी सीए हुए हैं या जो भी डॉक्टर बने हैं वो एक अच्छी लाइफ जी रहे, तो मेरे को भी एक अच्छी लाइफ मिलेगी, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन ये दिखाई नहीं देता आज तक जितने भी सिद्ध बने हैं या सिद्ध हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, सुख को भोग रहे हैं, अनंत सुख को भोग रहे हैं, ये दिखाई कैसे दिखेगा? वो तो अरूपी है ना, लॉजिक दे सकते हैं ना, क्यों कैसे दिखेगा? वो तो कैसे है, अरूपी है। यहाँ बात देखने की नहीं है, यहाँ बात कैसी है कि समझ उतरने की, कि वो उनको जैसे अनंत सुख का भोग वो कर रहे हैं, ऐसा अनंत सुख का भोग मैं भी करूँ तो मुझे क्या करना होगा, मोक्ष की प्राप्ति और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा। ये सबसे बड़ी बात जैन दर्शन कहता है, कुछ करना ही नहीं है, बाकी सब तो क्या कहते हैं, करना है करना है करना है, हमारे यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, बल्कि जो कर रहा था उस करने को छोड़ना है। अंतर बहुत बड़ा अंतर है, बाकी सब लोग कहते हैं करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, पर हम क्या कहते हैं, जैन दर्शन क्या कहता है कि करता तो तू अनादिकाल से आया है, तू अनादिकाल से कर ही तो रहा, अब तक क्या कर रहा है, ये कर रहा हूँ, वो करूँ, वो करूँ, तो अनादिकाल से करता ही आया है, अब तुझे इस कर्तापन को छोड़ना है, जितना तू कर रहा है उस करने को तू छोड़ेगा तो तुझे अपने आप अपने स्वभाव की प्राप्ति होगी, और जब तुझे पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति होगी तो तेरे अंदर ही तेरा मोक्ष न, अपनी निधि तो अपने में है, जो तेरे अंदर एक खजाना भरा है उस खजाने की तुझको प्राप्ति होगी, और वो खजाना हमको प्राप्त करना है कि नहीं ये हमें सबसे पहले नक्की करना पड़ेगा, क्योंकि अगर खजाना प्राप्त ही नहीं करना है तो सुरंग खोदने से मतलब नहीं है। खरा हमने चार दिन सुरंग खोदी और खजाना पास में आ जाए और हम हाथ पीछे कर ले कि मुझे तो नहीं चाहिए, तो फिर सुरंग खोदने का मतलब भी नहीं है। सबसे पहले अंदर ये सद्दान करना है कि मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है कि नहीं, और उससे भी पहले ये नक्की करना है कि मैं दुखी हूँ कि नहीं। दुखी तो कब होना है, जब मैं दुखी हूँ, अगर मैं दुखी ही नहीं हूँ तो मुझे सुखी क्या होना है, अगर मैं दुखी ही नहीं हूँ तो मुझे सुखी क्यों होना है, मैं तो सुखी हो गया। तो इसके लिए ये सब चीजें अपने सबसे पहले ये प्रश्न अपने से करना है, किसी से नहीं, ना मैं आपसे कर सकता हूँ ना आप मुझसे कर सकते, ये तो ऐसे प्रश्न है कुछ जो सबको अपने आप से करने हैं कि मैं वास्तव में दुखी हूँ कि नहीं हूँ, मुझे सुखी होना है कि नहीं होना है। अगर वास्तव में दुखी हूँ और सुख की प्राप्ति करनी है तो फिर उसका उपाय क्या है, वो उपाय फिर आपको जिनवाणी बता सकती है, लेकिन सबसे पहले प्रश्न तो आपको स्वतः अपने आप से पूछना पड़ेगा। तो ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में चलता रहना चाहिए, अगर चलता रहेगा तो किसी न किसी दिन किसी न किसी अवस्था में हमें जरूर उसके उत्तर की प्राप्ति होगी, और ये मोक्ष रूपी जो कार्य है वो हमारा सफल होगा। तो आज हमने मूल रूप से 28वां जो स्वरूपाचरण चरित्र है उसकी भूमिका रखी है, इस 7वें खंड से आगे उस स्वरूपाचरण चरित्र का और विशेष रूप में मुनिराज कैसे उस स्वरूपाचरण चरित्र को धारण करते हैं और किस प्रकार मोहराज शादी विकार का भाव का नाश होता है, अहंत दशा और सिद्ध दशा आती है, 13वां 14वां वन स्थान आता है, ठीक है, यहाँ अभी 6वें 7वें वन स्थान की चर्चा है, फिर धीरे धीरे जब श्रेणी चढ़ेगी अगले श्लोकों में 8 से 11-12 गुण स्थान तक लेके जाएंगे और अंत में 13वें 14वें गुण स्थान को पूर्ण करके सिद्ध दशा की वर्णन यहाँ पे किया जाएगा। तो हम सभी सिद्ध दशा की प्राप्ति करें इस भावना के साथ आज की क्लास, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो आज देखिए एक होमवर्क के रूप से आपको हमेशा अपना जितना आप पढ़ते जाते हैं छह डाला उसके छंद आप याद करते रहिए, क्योंकि छंद भी याद बहुत सरल छंद है, आप छंद भी याद रहेगा ना तो आपको गुनगुनाने के लिए भी और विषय को समझने के लिए भी स्पष्ट रहेगा। तो छहडाला हमने पूरे साल चली है अपनी, तो छहडाला से जितनी हो सके, ऐसा जरूरी है कि आप आँख बंद करेंगे और एक से छहडाला आपको याद हो जाएगी, ना होने वाली है और ना हम बच कह रहे हैं, धीरे धीरे याद करिए, पहली डाल भी याद करिए, दूसरी भी करिए, जितनी भी होती है जिसको उतना अच्छा है। तो ऐसे हम धीरे धीरे छठा डाल याद करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलिए हमारी स्तुति।
Thank you.